તારીખ 1/11/1995, શ્રી પરમાગમ સાર, બોલ નંબર 680 અને 701 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 640.
અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ ઉપરનો પ્રવચનોમાંથી આ વચનામૃત છે. અનુભવ પ્રકાશ એટલે શું અને અનુભવ પ્રકાશ માને ક્યા? આત્મા કા નિજાનંદ સ્વરૂપ હૈ, ઉસકી પર્યાય મેં પુણ્ય પાપ હોતા હૈ, યો ઇસકા વેશ હૈ, યાને મૂળ સ્વરૂપ નહીં હૈ. જીવ પુણ્ય પાપ કે પરિણામ રૂપ પરિણમન કરતા હૈ ઓર સંસાર અવસ્થા મેં અપને કો પુણ્યવાલા પાપ વાલા પુણ્યરૂપ પાપરૂપ અનુભવ કરતા હૈ. એક ક્ષણિક વેશ હૈ, એસા મૂળ સ્વરૂપ નહીં હૈ. મૂળ સ્વરૂપ તો અપના આનંદ સ્વરૂપ હૈ, નિજાનંદ સ્વરૂપ હૈ, મને આનંદ સ્વરૂપ હૈ. પુણ્ય ઓર પાપ કે પરિણામ મેં તો ક્લેશ હૈ, પુણ્ય ઓર પાપ કે પરિણામ મેં તો ક્લેશ હૈ, આકુલતા હૈ. જબકિ આત્મા કા સ્વરૂપ તો આનંદ આનંદમય હૈ, અનંત આનંદમય આત્મા કા સ્વરૂપ હૈ. તો પુણ્ય પાપ કી રુચિ છોડ કરકે સ્વભાવ કા અનુભવ કરના, યો અનુભવ પ્રકાશ હૈ. આનંદમય સ્વભાવ કા અનુભવ કરના, કોઈ અનુભવ કા પ્રકાશ હૈ. પ્રકાશ મને વેદન કરના. પુણ્ય પાપ કી રુચિ છોડ કરકે, રુચિ કહાં સે ઉત્પન્ન હોઈ કે જરૂરત મેં છે, અપેક્ષા મેં છે. પુણ્ય કી અપેક્ષા હૈ, પાપ કી અપેક્ષા હૈ, વાં ઉસકી રુચિ હૈ. इसके बिना नहीं चले संसार में, पुण्य पाप बिना नहीं चले. ऐसी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा वृत्ति में से रुचि उत्पन्न होती है. वो रुचि को छोड़ करके, तो रुचि को छोड़ना तो रुचि का कारण जो अपेक्षा है उसको भी छोड़ना, दोनों बात उसमें आ जाती है. उसको छोड़ करके स्वभाव का अनुभव करना, यानी पुण्य पाप के परिणाम से उपेक्षित होकर के. अपेक्षा छोड़ने का मतलब क्या होता है? उपेक्षित होकर के अंदर में अपना स्वरूप का अनुभव करना, उसी को अनुभव प्रकाश कहते हैं. उसी को अनुभव का प्रकाश, यानी अनुभव प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है. हाँ, वेदमान का विषय पुण्य पाप का निषेध है और स्वभाव का आदर है, वेदमान की बात है. अनुभव ऐसे होता है, पुण्य पाप की अपेक्षा जहाँ तक जीव को रहती है और पुण्य पाप की रुचि रहती है, जहाँ तक पुण्य भाव सुहाता है वहाँ तक अनुभव नहीं होता. चाहे वो पुण्य भाव किसी भी दर्जे का हो, किसी भी कक्षा का हो, जहाँ तक वो अच्छा लगता है या इसकी महिमा है वहां तक स्वरूप की महिमा नहीं आएगी. स्वरूप का भाव भाषण में स्वरूप की महिमा आते ही पुण्य पाप की महिमा छूट जाती है.
तो मात्र में
है भी दुख, पुण्य पाप के परिणाम में क्लेश है। कितना क्लेश है कि भट्टी जैसा दुख क्लेश है। किसको मालूम पड़ता है वो? कि जिसने आत्मा की शांति का अनुभव हुआ हो उसको ये मालूम पड़ता है कि कितना दुख है उसमें। जैसे पानी, पानी में से मछली बाहर आती है, मछली है वो पानी में से बाहर आती है, बाहर कितनी भी ठंड हो, ठंडी से मतलब नहीं है, उसको पानी में ही रहना सुहाता है, पानी का जीव है वो। पानी में से बाहर आते ही वो जिंदा नहीं रह सकती, तड़फड़ाहट करके मर जाएगी। ऐसे अपना जीव शांति का जीव है, आनंद का जीव है, उनको क्लेश अच्छा लगे वो बात बर्दाश्त होनी चाहिए। जिसको किसी भी कीमत पे क्लेश बर्दाश्त नहीं है वही आत्म शांति को प्राप्त करता है, वरना तो चलता है, क्लेश भी चलता है, उनको आत्म शांति मिलेगी ही नहीं। पाप के परिणाम की अपेक्षा वो रहती है, जैसे हम लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, व्यापार करते हैं, कितना उत्साह आता है, उत्साह आता है कि नहीं आता है? हाँ, और पैसा की कमाई होती है, धारणा से अधिक होती है, तो राजी होते कि नहीं होते? हाँ, क्योंकि उसमें कल्पना सुख की कर ली है, उसमें भी सुख की कल्पना कर ली है, जैसे पंचेंद्रिय के भोग है, सुख की कल्पना की है, सब पाप के परिणाम है। खाना पीना सब पाप के परिणाम है, ये हास्य क्या है? हास्य खुद पाप के परिणाम है, और कोई हंसता है तो लोग क्या समझता है? सुखी है, दुखी नहीं है, दुखी नहीं है तब तो हंसता है। परमार्थ के प्रकरण में वो पाप का परिणाम है, कोई निकाल ही नहीं है, तो उसकी अपेक्षा रहती कि नहीं रहती? ये सब परिणामों की अपेक्षा रहती है, उनको स्वरूप का अनुभव नहीं होता। हाँ, अब पहले इसमें आकुलता समझ में आएगी, और आकुलता समझ में आएगी तो छूटेगा, इसकी अपेक्षा छूटेगी। दुख मालूम पड़ेगा तो दुख से छूटने का सहज प्रयास होगा। सीधी बात हो गई। मैंने क्या है कि कोई लोग ऐसे भेद छांटते हैं कि ये पुण्य अच्छा है, ये पुण्य अच्छा है, वो पुण्य अच्छा है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है, वो इस प्रकार का पुण्य है, ये आत्मा का विकल्प है, ये तत्व का विचार विकल्प है, कोई भी कोटि का हो, सब में आकुलता है, सब में दुख ही दुख है, और दुख है वो समझने का विषय नहीं है, अनुभवने का, अनुभव करने का सुख दुख तो विषय है, तो वो अनुभव में समझ में आना चाहिए कि लगता है कि नहीं लगता है। न्याय से युक्ति से तो हाँ करते हैं हम लोग, लेकिन परिणमन में चलता है तब अनुभव क्या होता है? दुख का होता है अनुभव, तो छूटने का प्रयास होगा, वो बात है। आनी चाहिए, आनी चाहिए, मंद कषाय में भी आकुलता लगनी चाहिए। समझ में नहीं।
पुण्य का विकल्प भी दुख रूप लगता है।
हाँ, दुख रूप लगना चाहिए, तभी प्रयास होगा। उससे हटने का प्रयास कब होगा कि दुख लगेगा तब। जिसको रुचि है उनको तो अनुभव होना बहुत कठिन है। ये चीज़ ऐसी हुआ। कोई प्रश्न है इसमें? नहीं। हाँ, माना है पाप के परिणाम में भी सुख माना है, बहुत से पाप के परिणाम में सुख माना है, सुख की कल्पना किया है, इसलिए उसको वहाँ दुख, तीव्र दुख होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता है, उसको वहाँ तीव्र दुख होने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता है। प्रश्न क्या है? क्यों चलता है? रुचि है, अपेक्षा है, चलता है, दुख नहीं लगता है, निषेध नहीं आता है तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, आत्मशांति की जरूरत नहीं मालूम पड़ी, आत्मशांति की अपेक्षा नहीं है, आत्मशांति की रुचि नहीं है, तो जिसकी जरूरत होगी उसका प्रयास चलेगा, ऐसा ही बनता है स्वाभाविक तौर से। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा भी मध्यस्थ होएगा तो दुख दुख रूप मालूम पड़ना लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले सुख का अनुभव होए तभी दुख का अनुभव होए, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा भी मध्यस्थ होएगा ज्ञान तो दुख दुख रूप मालूम पड़ना लगेगा, या पात्रता बढ़ेगी यानी दर्शन का अनुभाग कम होएगा तो भी सुख उत्पन्न हुए पहला विकल्प आदि में पुण्य में दुख का अनुभव होगा, और दुख का अनुभव होता है तब हटने का प्रयत्न होता है, और ये प्रयत्न सफल होता है तब सुख का अनुभव होता है। तो पहले दुख का अनुभव होता है, बाद में पुरुषार्थ होकर के सुख का अनुभव होता है, ऐसा है। हाँ, दर्शन का अनुभव घटता है तो ख्याल में आने लगेगा, कारण तो है कि दर्शन का अनुभव वहां कम होता है। आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति है, मूल स्वरूप में आत्मा तो शुद्ध चैतन्य शुद्ध आनंद की मूर्ति है। उसकी रुचि करके और राग की और व्यवहार की रुचि छोड़ करके जिस क्षण में आत्मा का आनंद का अनुभव होता है वह निश्चय रत्नत्रय है। निश्चय रत्न त्रय स्वरूप का आत्मा का अनुभव में उत्पन्न हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र को रत्न कहते हैं और तीन रत्न को रत्न त्रय कहते हैं। तो कैसे उत्पन्न होता है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की रुचि करके, रुचि कब होती है, पहचान होती है तब होती है। बिना पहचान, बिना भावभाषण ऐसी अनन्य रुचि उत्पन्न होती ही नहीं। भावभाषण के बाद तो अनन्य रुचि, ऐसी रुचि उत्पन्न होती है कि जैसा वो पतंगा दिया से अलग नहीं रह सकता, भले ही जल जाए, स्वाहा हो जाए, तो भी वो अलग नहीं रह सकता। ऐसा परिणाम आत्मा से भिन्न रह सकता नहीं, अभिन्न भाव अनुभव करता है और वहां शांति मिलती है। वो पतंगा जल जाता है, यहां तो शांति मिलती है। आत्मा की रुचि करके, और जब ऐसे स्वरूप की रुचि होती है तो साथ ही साथ राग की और व्यवहार की रुचि छूट जाती है, विकल्प की रुचि छूट जाती है, पुण्य की रुचि छूट जाती है। व्यवहार को हो कि पुण्य भाव को, एक ही बात है। और जिस क्षण में आत्मा के आनंद का अनुभव होता है शुद्धोपयोग के काल में, उस वक्त निश्चय रत्नत्रय की उत्पत्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न होता है, और स्वरूप लीनता होने से स्वरूप का चारित्र भी, स्वरूपाचरण चारित्र भी उत्पन्न होता है। कोई ऐसे मानते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि का होने से वहां चारित्र उत्पन्न नहीं होता है। वो बात नहीं है, वहां भी स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि लीनता के काल में अनुभव होता है। और जो लीनता है, एकाग्रता है, स्थिरता है, वहां वितरागता है और वही चारित्र है। बाह्य चारित्र वहां नहीं दिखता। और पंचम और छठे गुण स्थान में, ऊपर के गुण स्थान में जितनी स्वरूप स्थिरता है, उतनी स्वरूप स्थिरता भले ही नहीं है, लेकिन वहां सम्यक चारित्र है ही नहीं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। सम्यक चारित्र है वहां, क्योंकि वहां धर्म की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन है, वहां धर्म है, मोक्ष मार्ग है, और यहाँ धर्म और मोक्ष मार्ग है, वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही एकता से ही मोक्ष मार्ग होता है। तीनों के एकता से ही मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र नी एकता रे एक पणे अने अविरुद्ध, फरी ने एक पणे लीधु, एक पणे ने अविरुद्ध, विरोध नहीं है। जिन मार्ग ते परमार्थ थी रे, मोक्ष मार्ग को, दिन मार्ग को कहूं सिद्धांत बुद्ध, सिद्धांत मां ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा कहा है, मोक्ष मार्ग के विषय में ऐसा कहा है। तो उमा स्वामी महाराज ने कहा, वही यहाँ मूल मार्ग में कहा, काव्य में वही बात किया। आचरण अच्छा है, वहां भी स्थिरता तो है ना उसमें। ये परिणति में स्वभाव के अनंत गुण है, आत्म स्वभाव के अनंत गुण की ये परिणति है। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो आ ही जाते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान आवे और चारित्र नहीं आए ऐसा बनता
नहीं है।
सर्व गुणास्ते सम्यक है, बराबर है। बीच में शुभराग आते भगवान की प्रतिमा का बहुमान भक्ति आती है क्योंकि स्वसंवेदन रूप वितराग मुद्रा देखी, यह अपना स्वयं का स्वसंवेदन भाव रूप अपना स्वरूप विचारता है। किसको? जिसको आत्मा का अनुभव हुआ, जो मोक्ष मार्गी धर्मात्मा है उसकी बात चलती है। उसको बीच में शुभराग आता है, उसको शुभराग आता है। तो किस प्रकार का शुभराग आता है? तो भगवान की प्रतिमा का भक्ति बहुमान, पूजा भक्ति बहुमान करता है। वो आए बिना रहेगा नहीं। जाते हैं सब, बहुत से ज्ञानी इन दिनों में नंदीश्वर द्वीप में आठवां द्वीप में जाते हैं, इसलिए तो अपन यहाँ नंदीश्वर की पूजा करते हैं। वो यहाँ करते हैं, अपन यहाँ करते हैं। यहाँ वास्तविक नंदीश्वर द्वीप है, यहाँ इसका मॉडल बनाना पड़ता है। यहाँ वाला जा नहीं सकते, मनुष्य है वो अढ़ी द्वीप के बाहर जा नहीं सकते। अढ़ी द्वीप का मर्यादा आई तो गोलाई में मानुष उत्तर पर्वत है, वो पर्वत के आगे कोई मनुष्य जा सकता नहीं है। और ये नंदीश्वर तो आठवां द्वीप है, ये तो ढाई द्वीप में पूरा हो गया क्षेत्र, मनुष्य का आवागमन वहां पूरा हो गया। जाते हैं वहां। अब क्या कहने का यहाँ अभिप्राय क्या है कि गुणस्थान अनुसार शुभराग आता है। राग उपादेय भी नहीं और गुणस्थान अनुसार नहीं आए तो चले भी
नहीं,
तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा नीचे कोटि का शुभ शुभ राग आ जाएगा तो गुणस्थान खत्म हो जाएगा, तो उनको आएगा शुभ राग, आएगा भगवान की प्रतिमा का पूजन करेगा। नहीं, उसमें आरंभ समारंभ होता है ना, तो मुनिराज को आरंभ समारंभ नहीं है, इसलिए वो वंदन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं, लेकिन बाहर की क्रिया नहीं है उसमें। उसमें से है हाँ, मुनिराज का शुभ भाव उच्च कोटि का है। बाह्य क्रिया होवे तो शुभ भाव ज्यादा तीव्र होवे ऐसी बात
नहीं है।
अर्घ हाथ में हुए और अर्घ चढ़े तो शुभ भाव ज्यादा हो ऐसी बात नहीं है, और ज्यादा अर्घ चढ़े तो ज्यादा शुभ भाव हो ऐसी भी बात
नहीं है।
देखो ये क्या क्या सूचित करता है कि बाह्य क्रिया का आग्रह मार्ग में
नहीं है।
मुनि का शुभ भाव ऊंचा है, वर्ग नहीं चढ़ाते लेकिन शुभ भाव तो बहुत ऊंचा है उसका। क्यों? कि उनको वितराग मुद्रा में वितराग भाव ज्यादा दिखता है, उनकी दृष्टि और सूक्ष्म है, अधिक सूक्ष्म है, तो भगवान की प्रतिमा में मुद्रा में बहुत उनको स्वसंवेदन दिखता है। एक पद है अपने स्तवन मंदिर में, कि जयवंतो दिनराज जगत में, ऐसा करके कोई पद है कि यद्यपि अचेतन है, भगवान की प्रतिमा यद्यपि अचल है लेकिन चेतन को चेतन दिखाता है। हाँ, खुद अचेतन होने पर भी वो चैतन्य को चैतन्य दिखाते हैं। बहुत अच्छा संकेत लिया है, एक बात अनुभव प्रकाश में लिया है, वो बात अनुभव प्रकाश में लिया है। अनुभव प्रकाश में अनुभव का ग्रंथ होने पर भी एक देव अधिकार करके अधिकार लिखा है। क्या लिखा है? देव अधिकार लिखा है, उसमें ये बात लिखी है। हाँ, वितराग पत्थर ने भी जो था वितराग मार्ग ने देखा रहे। हाँ, भाषण ने स्वरूप के भानपूर्वक प्रतिमा में भगवान की यथार्थ स्थापना को ज्ञानी जानता है, क्योंकि ज्ञानी जो है उसको स्थापना निक्षेप होता है, क्योंकि नई का विषय है, नई का विषय को ही निक्षेप कहने में आता है। देखो अरहंत देव की वितरागी मुद्रा, देखो अरहंत देव की वितरागी मुद्रा को देखो, ये पत्थर में से गढ़ी होने पर भी वास्तव में वितराग मार्ग को दिखाती है, परंतु किसको? के जिसे अंतर में भान हुआ है उसको। ओ शांत शांत वितराग मुद्रा है, तो ज्ञानी को वितराग भगवान की मुद्रा में वितरागी शांति का दर्शन होता है, और प्रतिमा होने पर भी उसमें स्वसंवेदन का दर्शन होता है, स्वसंवेदन को वो देखते हैं। वो उसमें क्या वही बात चलता है कि क्योंकि स्वसंवेदन रूप वितराग मुद्रा देख करके स्वयं अपना स्वसंवेदन भाव रूप अपना स्वरूप को विचार करता है, विचार करता है, मैंने आविर्भाव करता है, भगवान का दर्शन कैसे किया जाता है। मैं तो एक आत्मजागृति में आ गया आर्टिकल, जिनेन्द्र दर्शन, जिनेन्द्र दर्शन कैसे होता है कि जिनेन्द्र प्रतिमा में जो अनंत स्वसंवेदन है, केवल ज्ञान हुआ ने तो चतुर्थ गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग होता है उसमें स्वसंवेदन होता है, इससे अनंत गुणा तारतम्य वाला स्वसंवेदन केवल ज्ञान के काल में होता है। उतना तीव्र स्वसंवेदन है, प्रचुर बेहद स्वसंवेदन है कि यहां से भगवान छूट सकते नहीं है, यहां से उपयोग नहीं छूट सकता, सदा ही उसमें रहते हैं। इतना तीव्र स्वसंवेदन को देखने से देखने वाले को स्वसंवेदन का आविर्भाव हो जाता है, इसलिए वो स्थापना की करने में करते हैं। धर्मात्मा क्यों स्थापना करते हैं? वितराग मुद्रित जिनबिंब की स्थापना क्यों करते हैं? कि स्वसंवेदन का आविर्भाव का खुद को कारण है, ध्यान का कारण है, वो अपना निर्विकल्प ध्यान का वो कारण पड़ती है, इसलिए करते हैं, तो करेंगे ही करेंगे। अरे जीवो ठरी जाओ, हिंदी में ठरी जाओ को क्या बोलता है? जम जाओ, जम जाओ, उपशम रस में डूब जाओ। उपशम रस मैंने शांत रस, शांत रस में डूब जाओ, ये गुरुदेव का प्रवचन की शैली है। अरे जीवो जम जाओ, उपशम रस में डूब जाओ। एम जाने के मैंने ऐसे के भाव भगवान की प्रतिमा उपदेश देती है, इस प्रकार से मानो के भगवान की प्रतिमा उपदेश देती है बिना बोले, बिना बोले उपदेश देती है। इसलिए तो 249 पत्र में कहा है ये सजीवन मूर्ति है, उसका मौन भी उपदेश है। भाषा तो उपदेश है ही, लेकिन मौन भी उपदेश है। इसलिए स्थापना भी परम पूज्य है। इसलिए जिनेंद्र प्रतिमा की स्थापना है वो परम पूज्य है। किसी बाने इसका निषेध करना चाहिए नहीं, वो प्रकरण में तो चला है कि तीन कल्याणक तक वो द्रव्यजीन है, फिर भावजीन होते हैं। तीन कल्याणक तक तो वो द्रव्यजीन है और वो भावी में जीन होने वाले हैं, इसलिए वो पूज्य है, अभी भी पूज्य है, ऐसा लिया है। भले ही जीन नहीं हुए अभी, लेकिन पूज्य है, ऐसा भावी की पूजना का संकेत दीपचंद जी ने किया है अनुभव प्रकाश के देव अधिकार में। मानो कि भगवान की प्रतिमा उपदेश देती हो, इसलिए स्थापना भी परम पूज्य है। तीन लोक में